ప్రణమ సిద్ధాణం ప్రణమ ఆయుర్యాణం ప్రణమ ఉవధ్యాయాణం ప్రణమోలోయ సర్వసాహూణం ఏసు పంచణమోయారు సర్వపావపణాసను మంగళాణం చ సర్వేషం పఠమం భవై మంగళం చత్తారి మంగళం అర్హంత మంగళం సిద్ధ మంగళం సాహు మంగళం కేవలి పన్నతు ధమ్మో మంగళం చత్తారి లుగుత్తమా అర్హంత లుగుత్తమా సిద్ధలు ఉత్తమా సాహులు ఉత్తమా కేవలి పన్నతు ధమ్మోలు ఉత్తమా చత్తారి శరణం పవ్వజ్యామి అర్హంత శరణం పవ్వజ్యామి సిద్ధ శరణం పవ్వజ్యామి సాహు శరణం పవ్వజ్యామి కేవలి పన్నతు ధమ్మో శరణం పవ్వజ్జామి నమో నాణస్ నమో దంశణస్ నమో చరిత్రస్ నమో తవస్ పరం పూజ్య దేవాదిదేవ తీర్థంకర్ శ్రీ శాంతినాథ్ భగవాన్ కీ సమయ పాహుడు గ్రంథరాజ కీ ఆచార్య గురు శ్రీ విద్యాసాగర్ మునిరాజ్ కీ పంచ్ గురు భక్తి కా ఉత్సర్గం. సురధర్య ఓ इच्छामि भन्ते पंच महागुरुवत्तिकौ सगौकौ तस्सालोचेयौ अर्थ महापाणि हेर संयुक्तानम अरहंतानम अत्यगुण संपन्नानम उड्डलोयमत्थयम पैठ्यानम सिद्धानम अट्ठपवेण माव संजिताण आयरियाण आयाराज सुगनाणोपदेशयाण उवध्यायाण किरण गुण पालन रयाण सब्वसाहूण मिक्षुकालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमिष्यामि दुखखौ कमखौ बोहिलाहो सुगै गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मणुवमं गईं पत्ते वोच्छामि समय पाहुद मिणमूसुय केवली भणियं समय पाहुड़ की रचना लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुई थी। आचार्य कुनकुन स्वामी ने इस ग्रंथ को प्राकृत भाषा में लिखा था। और इस पर जो सबसे प्राचीन टीका उपलब्ध होती है वो 1000 वर्ष पूर्ववर्ती आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा रचित आत्मख्याति टीका है। आत्मख्याति टीका में बीच बीच में कुछ संस्कृत काव्य रचना है, उन काव्यों को समयसार कलश कहते हैं। मूल गाथाएं जो प्राकृत भाषा में है वो समय पाहुड़ ग्रंथ कहलाता है और जो संस्कृत काव्य आते हैं उनको समयसार कलश कहते हैं। श्रीमद राजचंद जी ने समयसार के विषय में कुछ बातें कही थी, वो इस प्रकार है। हे कुंदकुंद आदि आचार्यों, आपके वचन भी स्वरूपानुसंधान में इस पामर को परम उपकार भूत हुए हैं, इसलिए मैं आपको अतिशय भक्ति से नमस्कार करता हूँ। कुंदकुंद आचार्य का सिद्धांत संबंधी ज्ञान प्रखर था। कुंदकुंद आचार्य श्री आत्मस्थिति में बहुत स्थिर थे। समय सार पढ़ने से भी कई जीवों को एक ब्रह्म की मान्यता रूप सिद्धांत समझ में आता है। सिद्धांत का विचार बहुत सत्संग से और वैराग्य एवं उपशम का बल विशेषतः बढ़ने के बाद करने योग्य है। यदि ऐसा करने में नहीं आता तो जीव अन्य प्रकार में बहकर वैराग्य और उपशम से रहित हो जाता है। यानी समयसार ग्रंथ के विषय में श्रीमद राजचंद्र जी को यही अनुभव था कि यदि इसको शांति और वैराग्य के बिना पढ़ा जाए तो फिर गलत धारा में मनुष्य बह सकता है, इसका कुछ विपरीत अर्थ निकाल सकता है। निश्चय से अकर्ता, व्यवहार से कर्ता इत्यादि जो व्याख्यान समयसार में है वह विचारणीय है। तथापि जिसके बोध संबंधी दोष निवृत्त हो गए हैं ऐसे ज्ञानी से यह प्रकार समझने योग्य। अब उन्होंने गुजराती में लिखा होगा तो उसको हिंदी करके इन्होंने यहां पर दिया है। फिर जयचंद छाबड़ा जी ने इसके बाद एक भुंडारी टीका लिखी है अभी पिछले कुछ समय पहले, और बीच में एक संस्कृत टीका आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखी थी, आचार्य जयसेन स्वामी ने, जिसमें समवसरण का वर्णन आया था अभी बीच में निकला था कि वो वहां विदेह क्षेत्र जा करके साक्षात तीर्थंकरों के दर्शन करते हैं। वो और प्रत्येक प्रकरण के अंत में एक सुंदर ढूंढारी छंद में जयचंद छाबड़ा जी ने उस प्रकरण का सारांश निकाला है। और उन छंदों को भी अपन पढ़ते जा रहे थे, जैसे जीवा जी का जीवाधिकार के अंत में जो छंद था और कर्तृकर्माधिकार के अंत में, क्योंकि अपना दो अध्यायों तक स्वाध्याय पूर्ण हो चुका है तो उन छंदों को अपन एक बार पढ़ करके इतना स्मरण कर ले कि अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है। पहला महाधिकार जो सबसे पहला बड़ा प्रकरण था विशाल, वो था जीवा जीवाधिकार, जीव क्या है और अजीव क्या है, और इसका विवेचन इतना गहन था, इतना सूक्ष्म था कि जो भारतीय संप्रदायों में आत्मा को मानने वाले लोग हैं वे तो आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये तो शुरुआत है, भेद ज्ञान की शुरुआत है, पर आत्मा और किन किन से अलग है इसकी सूक्ष्म चर्चा जीवा जीवाधिकार में निकली थी। यहाँ तक कह दिया था कि आत्मा वर्णादिक से अलग है, आत्मा रागादिक से अलग है, आत्मा जीव समासों से अलग है, आत्मा गुणस्थानों से भी अलग है। यानी गुणस्थान भी आत्मा के स्वभाव नहीं है, यहाँ तक सूक्ष्मता में चले गए थे। तो उसके अंत में जीवा जीवाधिकार के अंत में जो छंद था वो अपन यद्यपि पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार एक झलक देख लेते। जीव अजीव अनादि संयोग मिले लखी मूढ़ न आत्म पावे, सम्यक भेद विज्ञान भय कुन भिन्न गहे निज भाव सुदावे, श्री गुरु के उपदेश सुनेरु भले दिन पाय अज्ञान गमावे, तेज गुमाहि महंत कहाय बसे शिव जाय सुखी नित थावे। जीव और अजीव अनादि काल से संयुक्त है और इनको इस संयोग अवस्था में देखकर मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा को पृथक नहीं समझ पाता, लेकिन जिस समय इसको भेद विज्ञान प्रकट होता है तब वो अपने स्वभाव को समझ लेता है कि मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं। और श्री गुरु के उपदेश को सुनकर जब उसके अच्छे दिन आते हैं तब उसका ज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और फिर वो उनके चरण सानिध्य में जाकर महात्मा बन जाता है और अंततः निर्वाण को प्राप्त करके अनंत काल तक सुखी हो जाता है। तो कर्तृ कर्माधिकार के अंत में अब ये दूसरा अधिकार ऐसा था, इसको आचार्य अमृतचंद स्वामी ने एक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया है। एक रंगमंच है और फिर बहुत सारे जीव उस नाट्य को देख रहे हैं, नाटक को, पर उसमें से एक विवेक है जो उस नाटक को देखते हुए भी भ्रमित नहीं होता। वहां जो खेल दिखाया जा रहा है उसको वास्तविक नहीं समझता और सत्य क्या है इसको पकड़ लेता है हर बार। अभी जैसे इन दो अधिकारों में उसमें जीवाजीवकार जीवा और अजीव का जो अधिकार था उसमें ये दोनों एक बन करके आए थे रंगमंच पर, जीव और अजीव, लेकिन उस विवेक ने पकड़ लिया कि ये अजीव है और ये जीव है, जीव और अजीव एक नहीं है, जीव अजीव नहीं है और अजीव जीव नहीं है। ये विवेक ने अंत में निर्णय कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि वो जीव और अजीव वहां से निकल गए, पकड़ में आ गए तो फिर निकल गए बाहर। अब फिर वो दूसरा रूप बना करके आते हैं, दूसरे अधिकार में वो जीव और अजीव ही जीव अजीव का कर्ता बन करके आता है, अजीव जीव का कर्म बन करके आता है, फिर अजीव जीव का कर्ता बन करके आता है, जीव अजीव का कर्म बन करके आता है। तो इस तरह वो नाट्य मंच पर आकर जीव और अजीव कर्ता कर्म बनकर सारे जगत को भ्रमित कर डालते हैं, सब दर्शकों को, श्रोताओं को, और फिर वहां जितने भी लोग ऑडियंस में हैं सब भ्रमित हो जाते हैं उनके नाटक को देखकर। लेकिन विवेक यहां भी उनकी उस अवास्तविकता को जान लेता है कि वास्तव में ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है और जैसा लोग समझ रहे हैं। द्रव्य अपनी ही पर्यायों का कर्ता होता है, तो इसलिए अजीव जीव का कर्ता नहीं हो सकता और जीव अजीव का कर्ता नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे की पर्यायों में निमित्त हो सकते हैं, पर निमित्त को व्यवहार नहीं कहता है कि कर्ता है, लेकिन निश्चय से कर्ता तो उपादान है, घटना वही हो रही है। जैसे कर्म बंद हुआ तो कर्म बंद की घटना में कारमण वर्गणा रूप जो परमाणुओं का पुंज है वो कर्म बन करके आत्मा में बंद गया, तो वो जो कर्म पर्याय प्रकट हुई है उसका कारण क्या है? तो निश्चय से विचार करो तो जिस पदार्थ से वो वर्गणा कर्म रूप परिणत हुई, मैंने जिस द्रव्य से वो चीज बनी, वो द्रव्य ही उसका कर्ता हो गया। लेकिन द्रव्य से अपने आप तो कुछ नहीं बना, इसका भी खुलासा कर्ता कर्म अधिकार में था कि ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, उसमें कोई ना कोई सहायक बना है। वो सहायक कौन था? जीव का विकारी भाव, रागादिक भाव। जीव ने रागादिक भाव किए तो कारमण वर्गणा कर्म बन करके आत्मा में चिपक गई। तो जीव के विकारी भाव को निमित्त बनाकर कारमण वर्गणा कर्म रूप परिणत हो गई तो कार्य क्या संपन्न हुआ? कर्म पर्याय। कर्म पर्याय का प्रकट होना ये कार्य हो गया, और वो पर्याय जिसके निमित्त से प्रकट हुई है उसकी दृष्टि से नैमित्तिक कहलाएगी। निमित्त से जो कार्य होता है उसको नैमित्तिक कहते हैं। और फिर उस कर्म पर्याय का उपादान क्या है? कर्मण वर्गण, जिन परमाणुओं से वो कर्म पर्याय बनी है वो उसका उपादान है। तो उपादान की दृष्टि से विचार करो तो कर्म पर्याय क्या है? उपादेय। हे ये उपादेय अलग वस्तु है, यहां पर उपादान उपादेय की चर्चा है। तो देखिए, नैमित्तिक और उपादेय ये दो क्या भिन्न वस्तुएं हैं? कर्म पर्याय ही निमित्त की दृष्टि से देखो तो नैमित्तिक हो गई, और उपादान की दृष्टि से देखो तो उपादेय हो गई। तो इस तरह निमित्त नैमित्तिक भाव व्यवहार नय का विषय बन जाता है और उपादान उपादेय भाव निश्चय नय का विषय बनता है। यहां पर चर्चा ये है कि व्यवहार से अपन बोलचाल में किसी को कर्ता मान ले, बोल ले, लेकिन निश्चय से अगर वैसा मानते हैं तो दोष आता है। निश्चय से जिस वस्तु से जो चीज बनती है वो वस्तु उस चीज की कर्ता होती है। स्वर्ण से आभूषण बने तो आभूषण का कर्ता कौन हुआ? स्वर्ण। आटे से रोटी बनी, रोटी का कर्ता कौन हुआ? आटा। मिट्टी से घड़ा बना, घड़े का कर्ता कौन हुआ? मिट्टी। ये निश्चय नहीं की व्यवस्था है, और इसी व्यवस्था के तहत कर्ता उस द्रव्य को माना गया है जिसमें से वो कार्य रूप पर्याय प्रकट हुई है। स्पष्ट हो गया? सरल है, समझना कठिन नहीं है, लागू करना कठिन पड़ता है कभी कभी। फिर दूसरी बात क्या है? अब निमित्त नैमित्त की दृष्टि से विचार करें तो व्यवहार ने तो निमित्त को कर्ता मानता है, कहता है कुमार ने घड़ा बनाया, ठीक है, ये एक बात। माँ ने रोटी बनाई, ये दूसरी बात। और राग ने कर्म बांधा, ठीक है ना, राग ने कर्म पर्याय को प्रकट किया। वास्तव में ये निमित्त नैमित्तिक भाव है। अब ये बात अगर स्पष्ट हो जाए कि निमित्त नैमित्तिक भाव क्या है और उपादान उपादेय भाव क्या है, तो फिर कहीं कठिनाई नहीं आती। फिर कर्ता कर्म अधिकार में एक बात और है कि पर द्रव्य की परिणति जब अपने निमित्त से होती है तो व्यवहार नय तो कहता है कि तुमने ये काम किया है, लेकिन निश्चय नय कहता है कि नहीं, तुमने नहीं किया, तुमने सहयोग दिया है। तो सहयोगी को स्वामी बनने का अधिकार नहीं है, ये अध्यात्म की मर्यादा का उल्लंघन है। और जितने सहयोग देने वाले स्वामी बनने की चेष्टा करते हैं वे सब एक परिणाम को प्राप्त करते हैं, वो परिणाम है आकुलता। जब भी दुख होगा तो आप विचार करके देखना अंदर कि क्यों दुख हो रहा है। मैंने किया ऐसा, उसने वैसा किया, वास्तव में किसने किया? जो भी पर्याय सामने आई है उसको किसने किया है, उसका कर्ता कौन है? निश्चय से वही द्रव्य है जिसकी पर्याय है। फिर अपन सहयोगी होकर के भी मालिक समझ रहे, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो फिर आकुलता होनी होनी। तो ये कर्तृत्व बुद्धि, समय सार में चार बुद्धियों का निराकरण हो जाता है। चार प्रकार, बुद्धि का अर्थ है धारणा, मान्यता, कितने प्रकार का भ्रम अपने अंदर बैठा हुआ है। तो अपनी मान्यता क्या रहती है? एक मान्यता तो ये रहती है, एकत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि का दूसरा नाम क्या था? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, एकत्व बुद्धि, शरीर और आत्मा को एक समझना। इसका दूसरा नाम क्या था? एकत्व बुद्धि तो एक नाम था, दूसरा अहंकार। यानी ये अहम किसको बोल रहा है? अब देखो, आप जब भी आप मैं बोलते हैं किसको बोलते हैं? आत्मा को बोलते हैं क्या? या आत्मा के साथ कुछ मिलाकर मैं बोलते हैं, बस आत्मा के साथ कुछ मिला करके मैं बोलना एकत्व बुद्धि है। यानी आत्मा से अतिरिक्त किसी को आत्मा में सम्मिलित कर लेना, दो को एक बना लेना, एकत्व बुद्धि है। इसी को एक और शब्द में बतलाया था, इसका ही पर्यायवाची एक शब्द और भी आता है। देखो एकत्व बुद्धि, अहंकार, अहंकार का अर्थ यहां पर अभिमान मत लेना, अहंकार का अर्थ मैं, ये जहां भी आप अहम अहम करोगे ना उसको अहंकार कहा है। जैसे कोई गरीब है और फिर एकदम कोई उसको नहीं पूछता, वो भी ये अगर ऐसा कहे कि मैं तो अभागा हूं, तो वो मैं जो बोल रहा है वो अहंकार है, वो अभिमान रूप अहंकार नहीं है। अहंकार दोनों प्रकार का होता है, अभिमान रूप और दीनता रूप, दोनों प्रकार के अहंकार हो सकते हैं। एक वो दीनहीन व्यक्ति का अहंकार, लेकिन उसको लोक में अहंकार नहीं कहते, उसको वो अहंकार अभिमान रूप अहंकार को तो अभिमान अहंकार कहते हैं, लेकिन उसको अहंकार नहीं, पर है अहंकार। छेड़ाला में तो बताया ना, मैं सुखी दुखी, दुखी भी तो है, अकेला सुखी थोड़ी है। मैं रंक राव, रंक भी तो है, अभी आगे का नहीं पूछ रहे हैं, ये जितना शब्द यहाँ पर उच्चारित है वही उसका विषय है। मेरे वाली बात तो अभी दूसरे विभाग में आ रही है, ये तो एक सबसे पहले समयसार ग्रंथ में इस एकत्व बुद्धि को खंडित कर दिया कि तुम जिसके साथ मिल करके अथवा जिसको अपने साथ मिलाकर अपने आप को मैं कह रहे हो वो सबसे बड़ी भूल है, जीव तत्व संबंधी भूल। तुम अजीव को जीव में मिला करके मैं कह रहे हो, यानी तुम अपने आप को जीव और अजीव का मिश्रण समझ रहे हो, तो तुमने जीव की असीमता को विकृत कर दिया, तुमने जीव को पुद्गल से बांध करके सीमित बना दिया, तुम छोटे मैं बन गए। समझना है, ये छोटा मैं, इसको कहते हैं छोटा मैं, और इसी का नाम है अहंकार, इसी का नाम है एकत्व बुद्धि, और इसी का तीसरा नाम है विकल्प। विकल्प इसको कहते हैं, लौकिक क्षेत्र में विकल्प का अर्थ होता है ऑप्शन। तुम उपवास नहीं कर सकते तो फिर दूसरा विकल्प यह है कि तुम गर्म पानी पी लेना। विकल्प का मतलब एक दूसरा उपाय या फिर दूसरा उसका भेद कर लो। पर यहां पर विकल्प का अर्थ क्या है, संकल्प विकल्प स्वरूप मनः। मन को क्या कहा, संकल्प और विकल्प ही जिसका स्वरूप है उसको मन कहते हैं। अब यहां पर विकल्प और संकल्प इनके अर्थ अलग है। लौकिक क्षेत्र में संकल्प का अर्थ क्या है, विकल्प का अर्थ तो आपको मालूम है कि ये नहीं कर सकते तो वो कर लो, ऑप्शन। और संकल्प का अर्थ भी प्रसिद्ध है लोक में, मैं संकल्प करता हूं कि आज जो तुमने चेष्टा की है उसका 20 दिन में जवाब दूंगा, ये संकल्प। संकल्प का अर्थ होता है प्रण, और विकल्प का अर्थ होता है ऑप्शन, भेद। पर समयसार ग्रंथ में, अध्यात्म ग्रंथ में विकल्प का अर्थ है मैं। दौलत राम जी की वो पंक्ति देखिए, उसमें आप ये बताइएगा कि विकल्प कौन से हैं। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, ये मैं के साथ जुड़े हुए जितने भी शब्द थे ये विकल्प थे। और मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, ये विकल्प नहीं है। अभी बोलो मत कुछ, ये विकल्प नहीं है, अभी सिर्फ अपन विकल्प की बात कर रहे हैं, तो है या नहीं है ये देखना है। मेरे सुततीय ये भी विकल्प नहीं है। मैं सबल दीन, मैं आ गया, ये विकल्प है। दे रूप सुभग मूरख प्रवीण, यहां भी मैं ही चल रहा है, ये क्या होगा, विकल्प। और संकल्प किसको कहेंगे, संकल्प को समयसार ग्रंथ में इसको स्वामित्व बुद्धि कहते हैं। एक द्रव्य कभी किसी दूसरे द्रव्य का स्वामी नहीं हो सकता, वह द्रव्य अपने ही गुण और अपने ही पर्यायों का स्वामी होता है और किसी का नहीं। और ये स्वामित्व बुद्धि भी एक मिथ्या धारणा है संसारी प्राणी में। जो अपना नहीं है उसको अपना मानना स्वामित्व बुद्धि है। और स्वामित्व बुद्धि को दूसरे शब्दों में ममकार कहते हैं। जैसे एकत्व बुद्धि को अहंकार कहा, स्वामित्व बुद्धि को ममकार। मम यान मेरा, तव पद मेरे ही में, वहां तव कार तुम्हारे, पद यानी चरण, और मम ही तेरे पुनीत चरणों में। मम ही मान मेरा हृदय, तो मम का अर्थ होता है मेरा, ममकार, मेरा मेरा करना। तो अब देखिए दौलत राम जी की उसी पंक्ति को, कौन सी ढाल में है, दूसरी ढाल में ना। मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, ये इसी ममकार को। एक और तीसरा शब्द है उसका, ममकार को संकल्प कहते हैं। संकल्प विकल्प मत करो का मतलब ये नहीं है कि प्रण मत करो और फिर ऑप्शंस मत करो। संकल्प का अर्थ होता है मेरा मेरा मत करो, और विकल्प का अर्थ होता है मैं मत करो। संकल्प विकल्प मत करो। तब देखिए, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, ये संकल्प नहीं है। मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, ये संकल्प है। फिर इसके बाद मेरे सुततीय, ये संकल्प है, मेरा आ गया ना। मैं सबल दीन, ये संकल्प नहीं है। बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ये भी संकल्प नहीं है। तो अब संकल्प और विकल्प में भेद स्पष्ट हो गया। बस समय सार में सर्वप्रथम जीवा जीवा अधिकार में संकल्प और विकल्प का स्वरूप स्पष्ट किया है, और स्पष्ट करके उस भ्रांति को तोड़ दिया है जो अनादिकाल से मिथ्यात्व के उदय के साथ चली आ रही है कि मैं ये हूं मैं वो हूं। कितनी छवियां बना ली जीव ने, मैं करते करते सुबह से शाम तक कितनी बार वो मैं अलग अलग ढंग से बोलता है। कभी सबॉर्डिनेट बनकर के बॉस से बोलता है जी साहब मैं आ रहा हूं, वहां पर वो साहब का मैं बन गया। फिर घर पर दूसरे ढंग से बोलता है अपने बेटे से, बेटा मेरा गुस्सा जानते हो तुम, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं। वहां पर वो पिता रूप मैं बन गया। इस तरह पचासों मैं का ये नाटक खेलता है दिन भर। समय सार के अध्याय तो पूरे हो जाते हैं लेकिन इसका नाटक चालू रहता है। तो मैं ये देखो, इसमें एक बात आपके स्मरण में होगी कि पुरुषार्थ सिद्ध उपाय के भुंडारी अनुवाद में एक दृष्टांत दिया पंडित दौलत राम जी और पंडित तोडरमल जी, इन दोनों ने भुंडारी अनुवाद किया है पुरुषार्थ सिद्ध उपाय का। तो उसमें एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, दृष्टांत ये दिया आपकी स्मृति में है कि जिन्होंने नहीं सुना उनकी जानकारी के लिए, कि एक मालिक होता है और एक उसका मुनीम होता है। तो मुनीम जब ग्राहकों के साथ बर्ताव करता है तो ग्राहकों के साथ बर्ताव करते समय वो मालिक जैसी भाषा बोलते हैं कि हमारे यहाँ उधार नहीं चलता और हमारा माल बिल्कुल A1 माल है, पर सारी बातें मतलब एकदम हमारा 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 करता है। लेकिन जब वेतन का समय आता है तब वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है और अच्छी तरह से आचरण में लाता है कि हमारा इतना ही है और बाकी सब मालिक का है। आगे समझो, बस इसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी लोक व्यवहार करते समय मैं मेरा तू तेरा आदि सारी चर्चाएं करता है, लेकिन अंतरंग में जब तत्व विवेक की बारी आती है तब वो इस बात को अच्छी तरह जानता है कि मैं और मेरा कितना है, क्या है, और कहने में जो कुछ आ रहा है उसका कैसा क्या विभाग है, क्या हिसाब किताब, बड़े अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इसलिए सम्यक दृष्टि लोक व्यवहार करते समय भी उस विश्वास के बल पर इतने, देखो व्यवहार के वचन कितने विपरीत होते हैं, अगर उसका निश्चय में अर्थ निकालोगे तो फिर कहीं से नहीं बैठेगा अर्थ, लेकिन फिर भी वो व्यवहार में सब एक दूसरे की भावना समझ जाते हैं। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी व्यवहार की भाषा बोलता हुआ, मैं मेरा तू तेरा करता हुआ भी निश्चय से अपने अंतरंग में इस बात को जानता है कि मैं और मेरा क्या और कितना है, इसलिए वो व्यवहार में प्रवृत्त होते हुए भी सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है। तो इस तरह जीवाजीव अधिकार में संकल्प और विकल्प, इन दो का निराकरण किया, पर इनका निराकरण एक बार सुनने मात्र से श्रद्धा में हो सकता है, पर संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं अपने अंदर अनादिकाल के कि यदि उसका अभ्यास न किया जाए तो अभ्यास के अभाव में वो श्रद्धा धीरे धीरे कहीं विलीन हो जाती है और वापस जीव अपने आप को मिश्रित रूप ही समझने लग जाता है। समाधि शतक के 45वें काव्य में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 1500 वर्ष पूर्व जो श्लोक लिखा है उस श्लोक में आचार्य कहते हैं, जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांतिं भूयोपि गच्छति। साधना ग्रंथ है समाधि तंत्र। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि आत्मा के स्वरूप को जानने वाला भी और आत्मा के स्वरूप को पर से भिन्न भावित करने वाला भी पूर्व मिथ्यात्व के संस्कार वश वापस भ्रमित हो जाता है, फिर से अपने आप को शरीर समझने लग जाता है, फिर से मिथ्या दृष्टि बन जाता है। इसलिए इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता होती है और सतर्कता के लिए आचार्य कुंदकुन स्वामी ने चारित्र पाहुड़ ग्रंथ में बताया है कि यदि तुम्हें अपना सम्यक तो सुरक्षित रखना हो तो प्रयत्नों की सेवा करते रहना, और सम्यक तो यदि छूटता है तो छूटने का एकमात्र कारण होता है कि जब वो देवशास्त्र गुरु से दूर चला जाता है और फिर कुदेव आदि की संगति में उलझ जाता है, तब उसका सम्यक नष्ट हो जाता है। फिर कर्तृकर्म अधिकार में कर्ता की चर्चा की और कुछ भोक्ता की भी चर्चा वहां पर की है कि कर्ता कौन होता है। जिस द्रव्य की जो पर्याय बनी है वर्तमान काल में, उसकी रचना जिस द्रव्य से हुई है, वह द्रव्य ही उस पर्याय का कर्ता होता है, पर वह पर्याय अकेले उस द्रव्य से नहीं रची जाती, उसके लिए किसी दूसरे द्रव्य का सहयोग भी अपेक्षित होता है। जैसे कभी भी खेतों से घड़े नहीं निकलते जमीन में से, घड़े कुम्हार के यहाँ ही बनकर के तैयार होते हैं। अनादिकाल से अभी तक किसी ने ऐसा नहीं देखा कि कहीं किसी मैदान में जमीन के अंदर से भक 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 घड़े निकल रहे हो। मिट्टी घड़े का उपादान है, यद्यपि उपादान है तथापि निमित्त उपादान के उस कार्य में सहयोगी अवश्य होता है। और फिर इसमें न्याय ग्रंथों की भी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां स्मरण में रखने योग्य हैं, जैसे अष्टशती नाम का एक ग्रंथ है। अष्टशती ग्रंथ में आचार्य अकलंक देव ने एक पंक्ति लिखी है, तद सामर्थ्यम अखंडयत सहकारी कारणम कथम अकिंचित कर्म स्यात्। उस उपादान की असमर्थता को, यानी अभी उपादान अकेला है, कोई निमित्त नहीं है उसके आसपास, तो फिर वो असमर्थ है, तो उसको सहकारी कारण सहकारी बन करके अखंड करता है, उसकी शक्ति अभी खंडित हो रही है, तो उसको शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए निमित्त का दूसरा नाम है बलाधान, निमित्त का तीसरा नाम है सहकारी कारण। तो उस उपादान को अपने कार्य में जो बल प्रदान करता है वो निमित्त है। निमित्त काम नहीं कर रहा है, निमित्त काम करने में सहयोग दे रहा है। आचार्य कुंदकुन स्वामी ने समयसार ग्रंथ में निमित्ताधीन दृष्टि का निषेध किया है कि निमित्त के भरोसे मत पड़े रहो, उपादान को जागृत करो। तो अभी जो चर्चा थी वो ये थी कि उपादान से कार्य हो रहा है, मिट्टी से घड़ा बन रहा है, लेकिन घड़ा खेतों में नहीं बनता, घड़ा कुमार के यहाँ चाक पर उस प्रक्रिया से बनता है जिस प्रक्रिया से ही वो घड़ा बनाया जा सकता है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि निमित्त का भी अपना स्थान है। और उस पंक्ति में आचार्य अकलंक देव ने कहा है, कथम सहकारी कारणम अकिंचित करम स्यात्। ये निमित्त कुछ भी नहीं करता, कुछ नहीं करने वाला है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये आचार्य वचन है कि निमित्त कुछ नहीं करता, ऐसा कैसे हो सकता है, अर्थात निमित्त कुछ करता है। ठीक है, अब निमित्त क्या करता है, तो जो जितना करता है उतना ही बोलना, अगर उससे ज्यादा बोलेंगे तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या करता है निमित्त, सहयोग करता है, बस इतना स्वीकार कर लो। इतना स्वीकार करने में क्या आपत्ति है। तो निमित्त सहयोग करता है। और फिर निमित्त की दूसरी परिभाषा आप्त परीक्षा ग्रंथ में आचार्य विद्यानंदी जी ने दी है, उसकी नौवीं कारिका की टीका में आचार्य लिखते हैं कि जिसके होने पर कार्य हो और न होने पर न हो, उस वस्तु को निमित्त कहते हैं। कितनी सुंदर परिभाषा है। देखो, इन सब परिभाषाओं का सापेक्ष अध्ययन न करने के कारण कई बार स्वाध्याय में भ्रम उत्पन्न होते हैं, विवाद भी हो जाते हैं, जबकि विवाद जो है वो अज्ञानियों की चेष्टा है। ज्ञानी जन तो केवल संवाद करते हैं, ज्ञानियों में कभी विवाद नहीं होता, ज्ञानियों में संवाद होता है, विवाद तो अज्ञानियों में होता है। और विवाद का कारण हठवाद है और संवाद का कारण स्यादवाद है। स्यादवाद से संवाद होता है, हठवाद से विवाद होता है। तो इस तरह निमित्त और उपादान है, इनकी व्यवस्था भी समझ में आ जाती है। तो कर्ता और भोक्ता की चर्चा आती है, तो निश्चय से जिस द्रव्य ने उस पर्याय को प्रकट किया है, उस पर्याय का कर्ता वह द्रव्य होगा, और जिसके सहयोग से प्रकट किया है वो उसमें निमित्त कारण बनेगा। कारण दो प्रकार के हो गए, उपादान कारण, निमित्त कारण। उपादान कारण सापेक्ष कथन करें तो वो निश्चय कथन होता है, निमित्त सापेक्ष कथन करें तो व्यवहार कथन होता है। और व्यवहार से देखा जाए तो निमित्त के माध्यम से जो कार्य हुआ उसको नैमित्तिक कहते हैं, निश्चय से देखा जाए तो उपादान से जो कार्य हुआ उसको उपादेय कहते हैं, हे उपादेय अलग है। तो इस प्रकार ये सारी व्यवस्था समझ में आती है। फिर कर्ता कर्माधिकार में जो जीव मैं करता हूँ इस अहंकार को लेकर दुखी हो रहा है, उसको आचार्य कहते हैं कि शांत हो जा, तू क्या करता है सोच। कुमार कहता है कि मैंने घड़ा बनाया, तो फिर आचार्य कहते हैं कि शांत हो जा, तू विचार कर, तेरी बात को मैं नहीं काट रहा हूँ, पर तू विचार करके देख कि तूने क्या किया है। तो कुमार कहता है कि अगर मैं नहीं सोचता घड़ा बनाने की तो फिर घड़ा बनता। आचार्य कहते हैं कि नहीं बनता। तो चलो तुम्हें हम एक पॉइंट देते हैं, तुमने सोचा घड़ा बनाने का, तो तुमने जो सोचा वो तुम्हारा कार्य था। ठीक है, फिर और क्या किया तुमने। तो कुमार कहता है कि मैंने मिट्टी खोदी और फिर उसकी मिट्टी के बड़े बड़े ढेले उसके ऊपर लादे गर्दभ के ऊपर, और फिर उसको हांकता हुआ मैं अपने घर तक लाया। मैंने मिट्टी नीचे उतारी पसीना बहने लगा मेरा। फिर उसके बाद उस मिट्टी को गीला किया, पैरों से रोंदा, रोंदने के बाद उसका लोंदा बना और उसको लेकर के मैंने चाक के ऊपर चढ़ाया। चाक के ऊपर चढ़ाने के बाद एक लाठी लेकर उस चाक को घुमाया और जब बड़े तीव्र वेग से वो चाक घूमने लगा तो फिर मैंने छिंदी और वो सब लेकर के अपने हाथों की कला से उसको आकार दिया। फिर उसके अंदर भी ऐसे हाथ घुमा करके खोखला आकार बना दिया। उसके बाद उसको अवे की अग्नि पर तपाया, पहले तो सुखाया, एकदम गीला घड़ा ऐसे आग में नहीं डाल दिया, और उसके बाद उसको तपाया और तपाने के बाद वो घड़ा तैयार हुआ है। तो घड़ा तो मैंने बनाया ना। आचार्य तो न्यायाधीश होते हैं, पर हमारे मन में आज सवेरे विचार आ रहा था कि जितने साधुराज, जितने मुनिराज आचार्य दीक्षा ग्रहण करते हैं, अच्छी बात है, उनकी पत्रिका में राजयोग के साथ साथ एक न्यायाधीश का योग भी हो तो बड़े सुंदर आचार्य बनेंगे, ऐसा विचार है। क्योंकि आचार्य को न्यायाधीश होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो आचार्य न्यायाधीश बन करके उस कुमार को समझा रहे हैं कि चलो तुमने इतना सब किया ना, हम एक पॉइंट और दे देते हैं बोले तुम्हें। वो कहता है कि ये क्या तरीका है, इतनी लंबी स्टोरी सुनाने के बाद आप एक पॉइंट दे रहे हैं। मैंने विचार किया घड़ा बनाने का, उसके लिए आपने एक पॉइंट दिया, और फिर उसके बाद मैं मिट्टी खोदने गया, मिट्टी खोदी और वहां से मिट्टी निकाली, घड़े गधे पर ला दी, तो फिर लाद करके उसको हाँकते हुए घर पर लाया, घर पर लाकर उतारी, उतारने के बाद पानी डाला, पानी डालने के बाद उसको रोंदा, रोंदने के बाद सब परिश्रम मैंने किया, घड़ा पूरा तैयार हो गया अग्नि में तप करके, पूरे वॉलंटियरिंग मैंने की, मैं ही सुपरवाइजर था, पूरा काम मेरे द्वारा हुआ और आप एक पॉइंट दे रहे हैं। किसका पॉइंट दे रहे हैं आप? आचार्य कहते हैं तू आकुलित मत हो, पूरी बात सुनकर के तू भी संतुष्ट हो जाएगा, अभी क्यों इतने बीच में क्यों खलबली मचा रहा है। तो फिर बोले कि बताइए महाराज एक पॉइंट क्यों इसका। बोले कि ये सारा जो तूने काम किया है ना, इसको सिर्फ शास्त्र में काय योग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या किया उसने? मिट्टी खोदी तो क्या किया कुमार ने? क्या किया? काय की चेष्टा ही की ना। फिर वहां से लेकर घड़े बनने तक उसने और क्या क्या किया? तो फिर बोले कि ठीक है तुम्हें ये दो पॉइंट्स मिल गए, तुमने ये दो काम किए हम मानते हैं, तुमने विचार किया अर्थात उपयोग, तुम अपने उस उपयोग के कर्ता हो जिस उपयोग में ये भाव उत्पन्न हुआ था कि मैं घड़ा बनाऊं, इसके तुम कर्ता हो माना हमने। और ये जो योग है, जो भी तुमने चेष्टाएं की, इसके भी तुम कर्ता हो। नीचे से आवाज आ रही थी। तो फिर तुम्हें दो अंक इसके मिले कि तुम योग और उपयोग के कर्ता हो, बस दो अंक। और ये योग और उपयोग मिट्टी से घड़ा बनने में निमित्त है। क्या मिट्टी से जो घड़ा बना ना, उसमें निमित्त कौन है? कुमार के योग और उपयोग, और साथ में और भी निमित्त है। निमित्त केवल सीमित एक या दो की गिनती में नहीं होते, निमित्त अधिक भी हो सकते हैं। वो अग्नि भी तो निमित्त है, वो चाक भी तो निमित्त है, वो चिंदी मतलब जो कपड़े के जो टुकड़े होते हैं ना जिससे वो फिनिशिंग देता है उसकी आकृति को, वो भी तो निमित्त है, वो सारे निमित्त है। और पानी भी निमित्त है, क्योंकि घड़ा बनने के बाद पानी नहीं रहता और पानी के बिना घड़ा नहीं होता, वो सब निमित्त है। तो कुमार से कह रहे हैं कि तुम्हें दो अंक मिल रहे हैं योग और उपयोग के, अब बोलो तुम इस घड़े के कर्ता हो, तुम निर्माता हो घड़े के, या फिर तुम इन दो के निर्माता हो? अपने विचार को तुमने निर्मित किया, तुमने अपनी चेष्टा का निर्माण किया, इसके अलावा मिट्टी में तुमने क्या किया? अब मिट्टी तुम बोलो क्या बोलना है तुम्हें। तो फिर मिट्टी अब न्यायाधीश है आचार्य गुरु, तो उनके सामने खुल करके बोलती है, अब उस तरफ नहीं देखती, उसको डर नहीं है कुमार का। आचार्य कहते हैं कि तुम उधर देखना ही मत उसकी तरफ, वो अगर बड़ी बड़ी आंखें करे तो परवाह मत करना, मैं बैठा हूं यहां। तो मिट्टी क्या कहती है कि हे गुरुवर, इसने कहा कि मैंने मिट्टी खोदी कुदाली से, ठीक है, इसने खोदी, खोदी कौन? फिर ये कहता है कि मैंने मिट्टी लादी गधे के ऊपर, लदी कौन? ये कहता है कि मैंने मिट्टी रोंदी, रुंदी कौन? ये कहता है कि मैंने घड़े को तपाया, तपी कौन? तो इसने तो केवल ऊपर से हाथ पांव चलाए हैं, पर मैंने तो अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, आप निर्णय कीजिए कि कर्ता कौन है, घट का कर्ता कौन है। आचार्य कुमार से कहते हैं कि अब बोलो, कुछ बोलना है तुम्हें? नहीं नहीं बोलेगी, वही मिट्टी करता है घट, मैं तो निमित्त हूं। तब आचार्य कहते हैं कि तू भी निमित्त नहीं है, अभी निमित्त का भी श्रेय मत लेना, तेरे योग और उपयोग घड़े के बनने में निमित्त है, तेरी आत्मा नहीं, इसलिए तू ये मत बोल कि मैं निमित्त हूं। ये कर्ता कर्म अधिकार का सार था। इसलिए अपन जो कर्ता बन करके आकुलित होते ना, उस समय तुरंत उस कुमार को याद कर देना और न्यायाधीश गुरु की आंखों का स्मरण कर लेना कि देखो भाई, और कुमार के मुंह से गुरु ने निकलवा दिया था क्या कि नहीं, मिट्टी तुम ही करता हो घट। इसी प्रकार कोई भी काम होता है तो उसको होते हुए देखो। ये कर्ता कर्म अधिकार का सार ये है कि अपने जीवन में आपको जब भी कोई ऐसा अवसर मिले तो किसी भी घटना को होते हुए देखो, करते हुए मत देखो, करते हुए देखने से बड़ी परेशानी होती है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि कोई केन्या का दर्शक है, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच को देखे, तो चाहे कोई जीते या कोई हारे, जो भी छक्के लगाएगा उसमें वो ताली बजाएगा, चौके लगाएगा तो ताली बजाएगा, आउट होगा तो ताली बजाएगा, केन्या का दर्शक। बस इसी प्रकार साधु दर्शक होते हैं, इसलिए सदैव आनंदित रहते हैं। और बाकी जो उलझे हुए लोग हैं संसार में, वो या तो कर्ता बनते हैं, या भोक्ता बनते हैं, या स्वामी बनते हैं, या फिर अहंकार करते हैं, इसलिए आकुलित होते हैं। साधु निराकुल क्यों रहते हैं? क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं होते। और जो साधु होकर के इन्वॉल्व होते हैं वो आकुलित होते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सल लॉ है, वो साधु या गृहस्थ किसी को भी बख्शता थोड़ी है। अगर साधु राग द्वेष करके किसी में इन्वॉल्व हो जाए तो फिर आकुलता का अनुभव उनको प्रत्यक्ष होगा। वो अपनी आत्मा से खुद पूछ करके देखेगी क्यों आकुलता हुई, तो अंदर से जवाब मिलेगा कि भाई समय सार में आप पढ़ चुके हैं क्यों आकुलता होती है, और फिर आप भूल गए थे उस समय, अब याद कर लीजिए क्यों आकुलता हुई। आप इन्वॉल्व हुए इसलिए आकुलता हुई, इन्वॉल्व मत हुई रिवॉल्व नहीं होना पड़ेगा, और आप अपने आप में आनंदित रहेंगे। बस तटस्थ होकर आप केन्या का दर्शक, ये दृष्टांत याद रख लो। देखो इंडिया और पाकिस्तान के अगर आप दर्शक बनेंगे तो फिर एक तरफ फटाके फूटेंगे और एक तरफ कुछ और स्थिति बनेगी, तो न तो फटाके फोड़ना है पर न गम मनाना है। ये संसार अनादिकाल से चला आ रहा है, जन्म मरण सुख दुख सब अनादिकाल से है, पर आज अपन ही किसी घटना को लेकर के दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि अपन अपने आप को उसके साथ जोड़ लेते हैं, जोड़े बिना देखो आप तो संसार सर्वांग सुंदर है, उसमें सब कुछ भरा हुआ है, अच्छाइयां भी है बुराइयां भी है, सात व्यसन भी है, पांच व्रत भी है, संयम भी है असंयम भी है, क्या नहीं है इसमें, चार गतियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, सब कुछ है। अगर एक बार दर्शक बन जाए कोई आकुलता नहीं होती। केवली भगवान अपने भी पूर्व जन्मों को जानते हैं, नरक पर्याय के दुखों को भी जानते हैं, लेकिन भोगते नहीं है, इसलिए आकुलता नहीं होती। तो जानने में कोई दुख नहीं है, ज्ञायक भाव आनंद स्वरूप है। पर कर्ता भोक्ता भाव जो है वो जीव को दुखी करता है। तो दुखी होना चॉइस है कि नहीं है, अपने हाथ में है कि नहीं है। तो आप चाहे तो दुखी हो, न चाहे तो न हो। जब भी आप दुखी हो तो किसी दूसरे को दोष मत देना कि उसने मुझे दुखी किया। कोई किसी को दुखी नहीं करता, दुखी अपन अपने ही भावों से होते हैं। बस इतना ही इन दो अधिकारों का सार था। तीसरा अधिकार प्रारंभ करने से पूर्व ये चर्चा हमने इसलिए निकाली कि एक झलक तो आ जाए स्मृति में कि अभी तक कितना स्वाध्याय किया है, क्योंकि गाथाएं तो कितनी हो गई है, 144 गाथाएं हो चुकी है। और इसके पश्चात पुण्य पाप अधिकार है। एक ही कर्म दो रूप बना करके रंगमंच पर प्रवेश करेगा और अंत में विवेक उसके कपट को पकड़कर पर्दाफाश कर देगा। ओम शांति। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा, बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख। जितना ये समय सार का स्वाध्याय करते समय समझ में आता है कि ये कितना आवश्यक ग्रंथ है। Thank you.